إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بشک نیک لوگ پئیں گے شراب کے ایسے جام جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. ابرار کا لفظ نہ آ گیا. وہ لوگ جنہوں نے رب کی اطاعت کا حق ادا کیا. نمبر دو, اس کے لگائے ہوئے فرائض کو بجا لائے ہوں, یعنی جس کے عائد کردہ فرائض کو پورا کیا ہو. اور تیسرا ابرار وہ ہوتا ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک گیا ہو. نمبر ایک, رب کی اطاعت کا حق ادا کرنے والا, فرائض کو بجا لانے والا, اور اس کے بعد منع کی ہوئی چیزوں سے رکنے والا. ابرار جمع ہے, اس کا واحد برن ہے اور برن سے ماخوذ ہے. بر کہتے ہیں نیکی کرنے اور صدقہ احسان کرنے والوں کو. بات کرتے ہیں کہ یہ بارن کا بھی جمع ہے. وہ شخص جو ساری زندگی اپنے رب کی فرما برداریوں میں گزار دے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو کیا ملے گا؟ یشربون من کأس, کأس میں سے پیے گا. اس پیالے کو کہتے ہیں جس میں شراب ہوتی ہے, خاص برتن ہوتے ہیں نا. مزاج کہتے ہیں ملاوٹ کو. زوج یزوج, یہ جو ہمارا لفظ ہے نا زوج یا زوجہ, وہ بھی اسی سے ہے. ازدواج کہتے ہیں ملنا جلنا, ازدواجی زندگی, یہ سب کا ایک ہی روٹ ہے. شوہر اور بیوی دو مختلف سیٹ اپ سے نکل کے ایک مشترکہ سسٹم بناتے ہیں. یہاں لفظ مزاج, یہ جو آپ کہتے ہیں نا آپ کا مزاج کیسا ہے, وہ بھی یہی ہے. کیونکہ مزاج بدلتا رہتا ہے. اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے متلون مزاج, رنگ بدلتا ہوا مزاج, کبھی پل میں تولا پل میں ماشا, کبھی خوش کبھی غم. مزاج ایسے انگلش میں کہہ لیں نیچر, کہتے ہیں نا اس کھانے کی تاثیر گرم ہے, اس کی ٹھنڈی ہے. جنتیوں کو جو شراب پلائی جائے گی اس کی تاثیر کافور کی ہوگی. کافور کیا چیز ہے؟ ہم دنیا میں تو کافور کچھ اور چیز ہوتی ہے, خوشبو ایک ہوتی ہے, لیکن جنت میں کہتے ہیں کہ کافور ایک چشمے کا نام ہے. اور کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس چشمے کی یہ پانی کی رنگت بالکل سفید ہوتی ہوگی براق کی طرح, اور اس کی تاثیر ٹھنڈی ہوگی جس سے کافور کی مہک آگی. مکہ والے جو تھے وہ شراب کے اندر کچھ نہ کچھ ملا کے پیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کافور ملے ہوئے پانی کی بات کر دی, خوشبودار. دنیا کی شراب بدبودار, کالی گندی, اور آخرت کی شراب سفید اور ٹھنڈی. اے نہیں یشربو بھی, ہاں یہ ایک چشمہ ہے. پتہ چل گیا کہ کافور کا ایک چشمہ ہے. کیسا چشمہ ہے جو اللہ نے بنایا؟ کون پیے گا؟ یشربو بھی ہاں عباد اللہ, اس سے پئیں گے اللہ کے خاص بندے. یہ کون سے بندے؟ جن کو سورۃ فرقان میں عباد الرحمن کہا گیا. اللہ کے بندے ہیں سارے اس کے, لیکن جو اس کے خاص بندے ہیں, جو حقیقت میں اس کے بندے بننے کا حق ادا کرتے ہیں, لیکن جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ کو بندگی سے خارج کر دیا, پھر اللہ ان کو تو اپنی طرف نہیں نسبت دے گا. کیسی ہوگی یہ؟ کیسے چشمے ہوں گے؟ پھاڑنے پڑیں گے, کھدال لے کے نالیاں کھود کے پانی کو نکالنا پڑے گا کا نہیں. یفجرونہا تفجیرا, جہاں چاہیں گے اس کو بہا کر لے جائیں گے. فجر کا لفظ ہے نا پھاڑنا, وسیع پیمانے پہ. جنت کے جو چشمے ہوں گے اس کو جدھر وہ موڑنا چاہیں گے وہ مڑتا جائے گا. اشارہ کافی ہے, جہاں سوچیں گے وہاں سے چشمہ پھوٹ جائے گا. سہولت کے ساتھ کام کرنے کی طرف اشارہ آتا ہے. کہتے ہیں جب ان کو پانی کو دل چاہے گا اپنے بالا خانوں سے نکلیں گے اور بس پانی ان کے پاس موجود ہے. پاکستان میں یا دنیا کے کوئی ایسے علاقے جہاں پانی کم ہوتا ہے, آپ سوچئے گھڑوں میں ڈال کے پانی لے کے آتے ہیں لوگ, کہیں پائپس کی بورنگ ہو رہی ہے, کہیں ٹیوب ویل کھودا جا رہا ہے, کا نہیں. یہ جہاں جدھر چاہیں گے اس کی ایک برانچ نکالیں گے اور اس کو لے کے چلے جائیں گے. ٹیپ نکالی اور ایک دوسری طرف لے کے چلے گئے. کون لوگ تھے یہ؟ اتنا کچھ اللہ ان کو دے رہا ہے. دل میں آتا ہے نا اللہ ان کے اوپر تو اتنا راضی ہے. بالکل اس لفظ کو پڑھتے ہی ایک دم فیلنگ ایسی آنے لگتی ہیں کہ جیسے بہت لگژریس لائف ہوگی جنت کی, ہر وہ چیز جس کو انسان چاہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پتہ ان کی نیکیاں کیا تھیں؟ یوفون بالنذر, یہ نظروں کو پورا کرتے تھے, منتیں مرادیں پوری کرتے تھے. یہ ابرار تو تھے ہی, اعمال حسنہ کرنے والے بھی تھے, لیکن نظروں کو بھی پورا کرتے تھے. नज़र पे पीछे बात हुई थी, नज़र क्या होती है, वो अपने ऊपर वाजिब कर लेना जो अल्लाह ने फ़र्ज़ ना किया हो। अल्लाह ताला ने कहा नहीं था करो, लेकिन उन्होंने कर लिया। इसीलिए यहाँ इससे मुराद अहद भी है, वादे जो करते थे वो पूरे करते थे। एक तीसरा मानी भी है, किसी इंसान पर जब कोई चीज़ वाजिब होती है या कोई दूसरा उस पर कर देता है, उसको बहरहाल उसको पूरा करना होता है। पीछे हम इस पर डिटेल से बात कर चुके हैं। खैर और भलाई की नज़र होगी, शरायत होती है नज़र पूरी करने की। नंबर एक कि उसमें अल्लाह की नाफरमानी ना हो, और दूसरी चीज़ क्या है कि अल्लाह की तरफ से पहले से ही वाजिब ना हो वो चीज़। अभी जोहर का वक्त होगा तो कोई सोचे कि अच्छा भाई मैं मन्नत मानती हूँ कि मैं जोहर की नमाज़ पढ़ूंगी, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो आप पे फ़र्ज़ है, आप नहीं मांगेंगे फिर भी होगी। ये लग़्व किस्म की नज़र होती है, इस तरह इसको नहीं करना चाहिए। फिर अगली बात है कि नज़र माननी चाहिए, लेकिन इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो काम हो जाए तो फिर करें, कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नज़र मानने से तकदीर पे कोई असर नहीं पड़ता, हाँ बखील से कुछ माल निकलवा लिया जाता है, क्योंकि अक्सर लोग नेकियां करते ही शर्तें लगा लगा के ये हो गया तो कर लेंगे, ये हो गया तो वो कर लेंगे, तो यूफून बिन नज़र, जो गलतियां होंगी अल्लाह ताला उनको माफ़ कर देगा। अमूमन नज़र की चार किस्में होती हैं, नोट कर लीजिए। एक ये कि एक इंसान अल्लाह से ये वादा करे कि उसकी रज़ा की खातिर नेक काम करूँगा। दूसरा ये कि वो इस बात की नज़र माने कि अगर अल्लाह ने मेरी फलां हाजत पूरी कर दी तो मैं शुक्राने में फलां नेक काम करूँगा। इन दोनों नज़रों को नज़र तबर्रो कहते हैं, नेकी की नज़र। कोई मिसाल याद आई कुरान में पाक में से? एक औरत ने नज़र मानी थी, इन्नी नज़र तो लकमाफ़ी बतनी मुहर्ररा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की माँ। तो ये तबर्रो की नज़रें, ये बहुत अच्छी नज़र है, इसको पूरा करना वाजिब है। तीसरी किस्म होती है नज़र की, कोई नाजायज़ काम करने या कोई वाजिब काम ना करने का अहद कर लेना, मतलब कोई कहे कि मैं इस साल ज़कात नहीं दूंगी या कुछ इस किस्म की बात। चौथी किस्म क्या होती है कि इंसान किसी जायज़ काम को अपने ऊपर लाजिम करे या किसी पसंदीदा काम के ना करने या उसके ऑपोजिट करने का अहद करे। मतलब कोई कह दे कि आज तो मैं शराब का एक घूंट पी के ही रहूँगा, अच्छा आज तो फिर एक गाना सुन के देखते हैं भला क्या जज्बात भड़कते हैं, इस किस्म की बात। ये जो दो किस्में नज़र की, इनको नज़र लज्जाज कहते हैं, लाम जीम अलिफ लज्जाज, यानी जहालत और झगड़ालूपन और ज़िद की नज़र। बात लोगों को ज़िद्द हो जाती है ना, अब बुरे बन के दिखाएंगे। इनमें जो तीसरी किस्म की नज़र है ना, ये होती नहीं है, आप जो मर्ज़ी कहते रहें ये काम आपसे होता कोई नहीं है। चौथी किस्म की जो है, बास कहते हैं इसको पूरा करें, बास कहते हैं कि इसका कफ़ारा दें। असल बात यह कि इंसान को ये आखिरी दो नज़रें माननी ही नहीं चाहिए, बस जो नीयत है वो कर लीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। इसके ऊपर तकदीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ऐसी है जैसे एक बंदा किसी को कोई रिश्वत देता है कि रिश्वत दे दूँ तो ये काम हो जाए। नबी सल्लम ने नज़र मानने से मना किया और फरमाया कि वो किसी होने वाली चीज़ को फेर नहीं सकती, अलबत्त इसके ज़रिए से कुछ माल वकील से निकलवा लिया जाता है। ये मुस्लिम और अबू दाऊद की रिवायत है। अब यहाँ कौन सी नज़रों की बात है, जो अपनी खुशी से की कि अल्लाह मैं नज़र तबर्रो, आप लिख लें या यूफून बिन नज़र के नीचे नज़र तबर्रो, तबर्रो वाली नज़रें मानते थे और फिर पूरी करवाते करते थे। इससे क्या होगा कि एक बंदे की तबीयत जो है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है क्या छुपा हुआ है वो पता चल जाएगा। अल्लाह सुब्हानहु ताला फरमाते हैं अगर कोई करेगा तो उसको करना ही पड़ेगा, और असल नज़र तो वो है कि जिससे अल्लाह ताला की खुशनूदी मकसूद हो। हमने कभी कोई नज़र मानी, इसको आप एक सेंस से कह सकते हैं वक्फ करना। लफ्ज़ सुना होगा अपने पाकिस्तान में, कुछ जगह वक्फ कर दी जाती हैं, कोई ज़मीन के टुकड़े वक्फ कर दिए जाते हैं। हमारी ज़िंदगियों में भी कुछ वक्त, कोई चीज़, कोई नेमत, हमारे घर के कोई टुकड़े वक्फ होने चाहिए। ये मेरे अल्लाह के लिए, हमारी गाड़ियाँ, हमारे सेल फोन्स, ये सारी चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए इस्तेमाल हो। बस दफ़ा हम जब दीन के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो बोझ समझने लगते हैं कि ये तो मेरा दीन पे लग रहा है, लेकिन आप गौर से देखें तो असल तो वो चीज़ है जो अल्लाह की दी हुई नेमत का हक अदा हो रहा है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वयूफूना बिन्नज़र, वो पूरी करते हैं नज़र को। जहाँ एक बहुत खूबसूरत नुक्ता है, नज़र आया से एक नज़र पूरी करते हैं, और आप देखा जाए तो बंदा मोमिन की एक ही नज़र होती है कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी। एक हदीस में आता है, अल्लाह की नाफरमानी में किसी नज़र के पूरा करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, ना कोई ऐसी चीज़ जो इंसान की मलकियत में ना हो। मतलब आपके कोई चीज़ है ही नहीं और आप नज़र मान ले कि मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। बहरहाल इसमें बहुत सारी और भी डिटेल्स हैं, यहाँ कह क्या दिया कि ऐसे लोग ज़िम्मेदार लोग होते हैं, ऐसी ज़बरदस्ती की ही नेकियां नहीं करते, अपनी मर्ज़ी से भी नेकियां करते हैं, और जिस काम को करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, क्योंकि वह यखाफून यौमन का न शर्रुहु मुस्ततीरा, और डरते रहते हैं उस दिन से जिसका शर हर तरफ फैला हुआ है। अल्लाह अकबर, लफ्ज़ मुस्ततीर को देखें ना तो वाकई लगता है कि क़यामत का दिन जो है वो हर तरफ शर फैला रहा है। क्या रूट होगा इसका, ज़रा गौर से देखिए, मुस्ततीरा, इसका रूट वही है जो तईर का है, तोए यारा। तईर तैयारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा फैलाव की तरफ इशारा है। बिल्कुल मुस्ततीरा के लफ्ज़ को जब हम पढ़ते हैं ना तो फिर जहन में आ जाता है जलजले का कोई मंज़र, कि उसके बाद चीज़ें बिखरी हुई, खराबियाँ, चीज़ें इधर उधर इस तरह से फैली हुई हैं कि जिसके बाद कोई खैर नहीं। कभी सैलाब कहीं से गुज़र चुका हो तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या हालत होती है उस वक्त में। मुस्ततीरा, शर्रुहु मुस्ततीरा, जिसका शर हर तरफ फैला हुआ है, क़यामत से डरने वाले, उसकी हौलनाकियाँ, उसकी तकलीफें इनको दुखी रखती हैं, इनको फिक्र लग जाती है कि उस दिन होगा क्या हमारे साथ, क्या हम बच जाएंगे उस शर से। एक जलजला आए तो क्या मैं उसमें बच जाऊंगी, सैलाब आ गया तो क्या मैं उससे बच जाऊंगी, और क्या क़यामत आ गई तो मैं उससे बच जाऊंगी। क़यामत का खौफ, क़यामत के अंदेशों में जीने वाला असल में हकीकत में जी रहा है। ऐसे ही लोग जो हैं क़यामत के दिन सुरखरू होंगे कि जिनको दुनिया में फ़िक्र थी कि हम कहीं अपने आप को उस दिन के शर में ना ले जाएं। जहन में आ रहा है आपके तईर लफ्ज़ के साथ, बिल्कुल मैं इस लफ्ज़ को सोचती हूँ ना तो मेरे दिन में फैली हुई चीज़ें आती हैं, फैलाओ, कोई ऊपर से कोई दाना फैला रहा है, कोई ऐसी चीज़ के सिमट नहीं पा रही, शर रू, उसका शर फैला हुआ, एक जगह एक चीज़ है, एक जगह दूसरी चीज़ है, किसी जगह तीसरी चीज़ है, उनको इसका डर आता है, वो प्यार से नहीं टाल देते हैं, हाँ वो स्वीट क़यामत आनी है, क़यामत। जो खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को, और खिला के क्या कहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, और कहते हैं कि हम तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाते हैं। कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई ख़ानदान नहीं, कोई दावत का बदला उतारना नहीं, कोई तुमसे फ़ायदा नहीं लेना, बल्कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउ वला शुकूरा, हम तो तुमसे किसी अजर की भी ख्वाहिश नहीं रखते और ना शुक्रिये के, ये भी नहीं कहते कि शुक्रिया तो अदा कर देते, और सबसे बढ़ के तो हम तो तारीफ़ भी नहीं चाहते। अमूमन इंसान खाना खिलाता है ना, अल्लाह की रज़ा के साथ कुछ ना कुछ जरासीम शामिल हो जाते हैं नियत में, तारीफ़ होगी, वाह वाह होगी, लोग कहेंगे किसने पकाया, खुशी होगी, खुशी भी ना मांगे, तारीफ भी ना मांगे, एक नियत कर लें कि मेरा रब राज़ी हो जाए, बस मैं उसको खिला रहा हूँ, वो मुझे खिलाता है, मैं उसके बंदों को खिला रहा हूँ, और सिर्फ उसके लिए। इस दर्जे पे खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है। मिस्कीन को खाना खिलाने की रग़बत तो आती ही है, लेकिन किसी को भी आप खाना खिला सकते हैं सिर्फ लिव छिल्ला। हम अपने बच्चों को रोज़ खिलाते हैं, कभी एहसान नहीं जतलाते, किसी के बच्चे को एक वक्त खिला दें तो कहते हैं इसको मैंने ये खाना खिलाया, और इसी तरह बाकी चीज़ें। हम अपनी ज़ात पे कितना लगाते हैं, कितना पहनते हैं, किसी को एक वक्त का पहना दें तो हम कहते हैं कि मैंने उसको पहनाया था। वही काम जो हम अपने लिए कर रहे होते हैं, अगर उसमें दूसरे को भी शामिल कर लें तो ना चाहते हुए भी दिल चाहता है कि अब ये बंदा इसका कम अज कम एहसान तो माने। ला नूरी दु मिनकुम जज़ाउन वला शुकूरा, ये कब होगा, ये कैसे होता है? आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करें, क्योंकि ये तकवा का बड़ा खूबसूरत मुकाम होता है कि बस अल्लाह की रजा, हाँ अल्लाह की रजा खुद ब खुद खुशी देती है, सुकून देती है, दिल खिल जाता है, लेकिन दूसरों से नहीं मांगना। और इसके ऊपर काम करते करते आपको पसीने आ जाएंगे, यकीन करें। एक इमाम थे, कहते हैं सारी जिंदगी मुझे जिस चीज़ में सबसे मेहनत करनी पड़ी वो अपनी नीयत की दुरुस्तगी थी। मैं इस लफ्ज़ को पढ़ती हूँ या बोल रही हूँ तो जहन में क्या आ रहा है, जैसे स्टेयरिंग, गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी एक दफ़ा आप गियर में डाल देते हैं, चाबी लगा देते हैं, गाड़ी तो अब चलती रही, अब जब रोकना है तभी ब्रेक लगानी है। सिर्फ एक काम ड्राइवर को करना पड़ता है, एहतियात से स्टीयरिंग को कंट्रोल करना पड़ता है। ज़रा हाथ हिला तो आप लेफ्ट लेन में चले जाएंगे और टकराव हो जाएगा, और हो सकता है दूसरी तरफ हुए तो खाई में गिर जाएंगे। सामने गाड़ी आ रही थी और आपने उससे ना अपने आप को बचाया तो पकड़े जाएंगे। ये स्टीयरिंग हमारी नीयत है। नेकी के कामों में बुरे को छोड़ दें, बुराई का काम छोड़ें। याद रखिए जितने दिल खट्टे मैले होते हैं ना दीन के काम करने वालों के, वो इस मुहर्रिका की वजह से होते हैं। ये जज्बे मुहर्रिका है। मेरी तारीफ ही नहीं हुई, मुझे बढ़ाया नहीं गया, दूसरे की बड़ी तारीफ होती है, मेरी नहीं होती, मुझसे तो लगता है कभी खुश भी नहीं कोई होगा। नहीं, ला नुरी दमिनकुम, ला नुरी दमिनकुम जज़ाउन वला शुकूरा। कोई ऐसी नेकी इंसान ज़रूर करे कि जिसमें ये कह सके कि अल्लाह ये सिर्फ तेरे लिए, ये सिर्फ तेरे लिए। और ऐसी बातें किसी दूसरे के सामने भी अगर कभी रखें तो ये नियत रख के कि अगले को सोचने का तरीका है, समझ आ जाए। बास ने यहाँ एक वाक्या पेश किया जिसकी बुनियाद पर इन आयात को मदनी आयतें कहते हैं। वाक्या चूँकि दुरुस्त नहीं है इसलिए मैं तफसीलात नहीं देती, लेकिन कहने वालों ने जो यही कहा कि हज़रत हसन और हुसैन बीमार थे तो उस मौके पे हज़रत अली और फातिमा ने ये नियत की कि हम इनके सेहतयाब होने पे कुछ लोगों को खाना खिलाएंगे या रोज़े रखेंगे 3 रोज़े। फिर वो पहले दिन रोज़ा रखने लगे तो कोई मिस्कीन और गरीब लोग आए, उनको खिला दिया। दूसरे दिन 3 दिन खुद भी भूखे रहे, बीवी बच्चों को भूखा रखा, और उस पे अल्लाह ताला ने कहा। लेकिन ये वाक़या कई हिसाब से दुरुस्त नहीं, पहले तो इसकी सनद दुरुस्त नहीं है, बहुत जगह आपको मिलेगा, अमूमन तफसीर में ये मिलेगा। दूसरी बात है कि एक बंदे का खाना था और 5 बंदों को खिलाया जा रहा है, और दूसरी बात है कि बच्चे भी बीमार थे, यानी इसकी कोई दुरुस्त बात नहीं। ये बिल्कुल आम बात कि जो बंदा भी ये काम कर लेगा उसको ये सब कुछ मिल जाएगा। कदीम दौर में ये रिवाज होता था कि कैदियों को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लगाकर रोज़ बाहर लाते थे सैर करवाने के लिए, और वो सड़कों और मोहल्लों के बाहर भीख मांग कर पेट पालते थे। हुकूमत नहीं देती थी, बेचारे मिसकीनों और गरीबों को खुद खाना पड़ता था। बाद में जब इस्लामी हुकूमत आई तो उन्होंने इस तरीके को बदला और ऐसे लोगों को खुद खाना देना शुरू किया। तो यहाँ इसलिए मिसकीन और असीर का लफ्ज़ आ रहा है। असीर कैदी को कहते हैं, असार यसीर उसे सैरुन, के ऐसे लोग जो हैं वो ऐसे मामलात में भूखे नहीं रहते और उनको इस चीज़ की फ़िक्र होती है। अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो हैं उस दिन की सख्ती से डरते हैं। इन्ना नखाफ मिन रब्बिना, हम डरते हैं अपने रब से। किस दिन की? यौमन अबूसन कमतरीरा, उस दिन की सख्ती से जो बड़ा तुरशरू और सख्त है। उबूस कहते हैं तेवरी चढ़ाए हुए को। अबस अतवल्ला में हम ज़्यादा इसको तफसील से देख सकेंगे, लेकिन अबूस वो शख्स जिसने पेशानी पर बल डाल रखे हों और जिसके चेहरे से गुस्सा और वहशत नमूदार हो। और कमतरीरा कहते हैं शदीद, बहुत सख्त, करख्त, खौलनाक मंजर, यानी इतना सख्त वो दिन है कैसे लगेगा कि वो दिन तेवरियां खा रहा है। आपने उर्दू में मुहावरे सुने होंगे ना, आज सूरज जो था वो आग बरसा रहा था, आज तो आसमान इतना रोया बारिश हुई। बिल्कुल वही बात है कि वो दिन इतना सख्त होगा कि लोगों को लगेगा कि ये हमारी तरफ तेवरियां चढ़ा चढ़ा कर देख रहा है। इंतहाई बदमिजाज सा कोई किरदार सामने आता है, ऐसा सख्त दिन आने वाला है कि कि जिस दिन ये सारी चीज़ें होंगी और लोग अपने आप को वहाँ डरा रहे थे उस दिन से कि अल्लाह हमें इस तरह के हाल में ना करना, ये अब्रार क्या कहेंगे? फवकाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौमी, बस बचा लेगा इनको अल्लाह उस दिन के शर से। वलक्काहुम नज़रतन वसुरूरा, और बख्श देगा इन्हें चेहरों की ताजगी और दिलों का सरूर। ऐसी तमाम सख्तियों वाले दिनों से अल्लाह ताला लोगों को बचा लेगा, उस दिन की सख्ती सब ख़त्म। ये बिल्कुल ऐसे है कि जिस तालिबे इल्म का इम्तिहान अच्छा होता है वो ग्रेजुएशन के दिन पे फेल होने का डर नहीं रखता, ये फिक्र होती है कि फर्स्ट से सेकंड ना आ जाऊँ, आधे नंबर से पीछे ना चला जाऊँ, लेकिन इसके अलावा उनको कोई फिक्र ना होगी और जन्नतियों को तो वो भी ना होगी। अल्लाह सुबहाना तला फरमाते हैं कि उनको इस दिन की सख्ती से बचा लिया गया, इसी पे वो बड़े खुश हैं, बाकी चीज़ों को क्या करना है। इनके चेहरे फूलों की तरह खिले हुए होंगे और इनके दिल खिले होंगे, सुरूर, वो सुरूर जो छुपाए ना छुपे, सिर से आइए, राज को कहते हैं ना, तो सुरूर कहते हैं वो खुशी जो छुपाने से छुपाई ना, होता है ना कभी दिल में कोई बात मचल रही हो, आप जितना मर्जी के किसी को नहीं बताना, फिर भी आपके चेहरे मोहरे आपकी हंसी से आपकी मुस्कुराहट से दिखती है। जन्नती उस दिन इतने खुश होंगे कि उनको वहाँ इत्मीनान मिल रहा होगा। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वजज़ाहुम बिमा सबरू, और इन्हें सब्र के बदले में यहाँ ये सब कुछ मिला, क्या? जन्नत व हरीरा, जन्नत और रेशमी लिबास। कौन सा सब्र? मोमिन की सारी ज़िंदगी सब्र है, अल्लाह के अहकामात की अदायगी पर सब्र, जिन बातों से रोका गया उससे रुकने पे सब्र, महरूमियों पे सब्र, नुकसान पे सब्र, इस्लाम के दुश्मनों के सामने सीना तान के खड़े होने पे सब्र, जंग में जीते के हारे दोनों पे सब्र। कोई गोशा ऐसा नहीं है जो इंसान को सब्र से दूर कर दे, सेल्फ कंट्रोल्ड। सारी ज़िंदगी शहादत है हक की गवाही, मौका पड़ा तो जान की शहादत। हर लालच से मुंह मोड़ लेना, रग़बतों से मोड़ मोड़ना, वही वक्त जो हज़ारों डॉलर दे सकता है उस वक्त को अल्लाह के नाम पे डाल देना, वही नींद जो बंदे को सुला सुला के जिस्म को आराम पे ले आए, उस नींद को छोड़कर अल्लाह के लिए आना, पूरी ज़िंदगी का सबर है। जिस वक्त हम डबल पे लेने वाले होते हैं उस वक्त हम छुट्टी कर लें, डबल अफसोस होगा ना। ये हर बंदे को खुद पता चलता है कि किस दिन आने का मुझे कितना अजर मिल रहा है, और जन्नत तो मिलनी ही है, वह हरीरा, रेशमी लिबास की बड़ी बात होती है जन्नत के साथ। अब अगली आयतों को ज़रा एक साथ पढ़ते हैं ताकि हम इसका मज़ा ले सकें। मुत्तकीन फीहा अलल अराइकी, वहाँ पलंगों पर तकिया लगाए हुए होंगे। मुत्तकी की जमा, आराय करीका की जमा, तकिए लगा लगा के बैठे होंगे। ला यरौना फीहा शमसं वला ज़महरीरा, ना नज़र आएगी इन्हें वहाँ सूरज की तपिश और ना ठंडक। अल्लाह कहते हैं ना जन्नत में धूप की तपिश होगी और ना ज़्यादा ठंडक होगी, ये दो ही चीज़ें हमें तकलीफ़ देती हैं ना, या बहुत गर्मी या बहुत सर्दी, तकिए भी मिल जाएंगे वहाँ। वदानियतन अलैहिम ज़िलालुहा, और करीब होंगे उसके दरख्त और दरख्तों के साए। दानिया दनूब से करीब आई हुई चीज़, दुनिया भी इसी से है, और ज़िलालुहा उसके साए, किन के? उन दरख्तों के। वज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, और मेवों के गुच्छे झुके हुए लटक रहे होंगे। कत्फ कहते हैं ना उचक लेने को, जैसे गुच्छे में से कुछ तोड़ना। तज़लीला ज़ुल्लुन से झुके हुए, बड़े नरम अंगूर का गुच्छा सोच लें जहन में। वयुताफ़ु अलैहिम बियानियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाबिन कानत क़वारीरा, और गर्दिश में होंगे इनके सामने चांदी के बर्तन, और क्या? मिन फिद्दतिन व अक्वाबिन कानत क़वारीरा, और शीशे के चमकदार ग्लास। दुनिया में चांदी होती है ना तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती, चमक उसमें बहुत होगी लेकिन अंदर से बाहर की चीज़ नहीं दिखती, लेकिन जन्नत की चांदी कहते हैं कि उसके अंदर से दिखेगा, कि अल्लाह सुबहान तआला वहाँ इतना कुछ दिखाएगा और इतनी प्यारी चीज़ें होंगी कि लोग उसको देख कर समझ जाएंगे कि ये शीशे का है लेकिन असल में वो चांदी का होगा। कैसा होगा अल्लाह को पता है। इसी आयत पे किसी मुफसिर ने कहा कि जन्नत में जितनी चीज़ें मिलेंगी इन सब की कोई मिसाल या नज़ीर इस दुनिया में मौजूद है, सिवाय इन गिलासों और बर्तनों के जिनकी साख्त चांदी से है मगर आईने की तरह शफाफ है। ये इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तफसीर है। कहते हैं कि पता नहीं कैसे होगी, ट्रांसपेरेंट कैसे हो जाएगी, ये अल्लाह को पता है। अल्लाह अकबर। कवारीरा, और शीशे भी वो जो मिन फिद्दतिन, चांदी की किस्म के होंगे। कद्दरूहा तकदीरा, साकियों ने इन्हें पूरे अंदाज़ों से भरा होगा। ये नहीं कि गिलास इतने भरे हुए हैं कि मुंह को लगाने से पहले ही गिरने लगा, उछल पड़ा, बिल्कुल एक ख़ास अंदाज से, तरीके से, सलीके से रखे होंगे। दुनिया में अच्छा खाना ही बड़ी बात नहीं होती, सर्विंग भी बड़ी बात होती है कि आप बहुत अच्छे तरीके से सर्व करें। बाज़ दफ़ा चीज़ें बहुत महंगी ले लेते हैं, खाना भी अच्छा होता है लेकिन नौकर सर्व अच्छा नहीं करते, भोंडे तरीके से ऊपर से ग्लास पकड़ के ला के आपके सामने रख देंगे, उंगलियां बीच में डाली होंगी, वहाँ ऐसा नहीं होगा। बड़े प्यार से सलीका, यहाँ से कद्दरूहा से सलीका पता चल रहा है कि बहुत अंदाजे से रखा होगा। व युस्कौन फ़ीहा कअसन काना मिज़ाजुहा ज़ंजबीला, और उन्हें पिलाए जाएंगे वहाँ ऐसी शराब के जाम जिसमें जंजबील की आमेजिश होगी। जंजबील पता है क्या होता है? अदरक। मक्का वाले जो थे वो शराब के अंदर सूंठ मिला हुआ पानी डालते थे, आज भी आबे जो सुना होगा अपने नाम, और अदरक के अंदर बहुत नशा होता है। जंजबील ऐनन फ़ीहा तुसम्मा सलसबीला, ये जंजबील भी जन्नत का एक चश्मा है जिसको सलसबील कहते हैं। पीछे कौन सा चश्मा पड़ा था? आगे जाके हम पढ़ेंगे तीसरे पारे में, एक चश्मे का नाम है तस्नीम, कफूर, और अब तीसरा जंजबील है। व यतूफ़ अलैहिम विल्दान मुखल्लदून, और चक्कर लगाते रहेंगे इनकी खिदमत में ऐसे बच्चे जो हमेशा एक ही हालत पर रहेंगे, जवान रहेंगे, यानी कि बूढ़े नौकर। जब एक्सपर्ट होते हैं लोग तो बूढ़े हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। मुलाजिम को ट्रेन करें 2-3 साल में आपका मिजाज समझता है, फिर उसका उम्र बदलने लगती है, कहा वो हमेशा लड़के ही रहेंगे। इज़ार आई तहुम हसीब तहुम लूलू अम मंसूरा, जब तू इन्हें देखेगा तो यूं समझेगा जैसे मोती हैं बिखरे हुए। नसर से एक होता है ना शेर, और उसके मुकाबले पे नसर, ये वही चीज़ है, बिखरा हुआ कलाम होता है। शेर बहुत मुनज़्ज़म, बहुत मोतियों में पिरोया हुआ कलाम होता है, मोतियों की तरह बिखरे हुए होंगे। व इज़ा रअयत थम्म रअयत नईमं व मुल्कन कबीरा, और जिधर भी तुम देखोगे तुम्हें नेमते ही नेमते और वसी मुमलिकत नजर आएगी। अल्लाह हुक्म, कैसी होगी दुनिया में एक नेमत मिले तो साथ ही दूसरा गम, वहाँ सब कुछ होगा। आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुज़रुन, इनके ऊपर लिबास होगा बारीक सब्स रेशम का बना हुआ। वह इस्तबरक, और अतलस का, यानी जो नीचे रेशम है वो मोटा होगा। इस्तबरक जो ये बरेका से है, बारा काफ, कि नीचे मोटा रेशम होगा ऊपर बारीक होगा। अच्छे कपड़े पहने तो जेवर। वह हुल्लू असाविर मिन फिद्दतिन, और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, कभी सोने के कभी चांदी के। दिल भी तो भर जाता है ना सोने से, वैसे सोने से नहीं भरता, ना सोने से भरता है दिल, ना सोने से भरता है। वखुल्लु असाविर मिन फिद्दतिन वसका रब्बुहुम शराबन तहूरा, और इनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और पिलाएगा इन्हें इनका परवरदिगार नहायत पाकीज़ा शराब, जो अल्लाह खुद पिलाएगा। एक नशा होता है दुनिया में नेकी का, खेब होती है। ईमान आपको सोने नहीं देता, ईमान आपके अंदर ऐसे ऐसे आइडियाज़ लाता है कि आप उछल के बैठ जाते हैं, फिर आपको मज़ा आने लगता है। शुरू में आप नेकी के लिए नेकी करते हैं, बाद में मज़े के लिए करते हैं, लेकिन उस मज़े में भी अजर है कि अल्लाह ने चॉइस चेंज कर दी। शुरू में आप कहते हैं तिलावत सुन लो सवाब होगा, फिर आप तिलावत सुनते हैं मज़े के लिए। अल्लाह सुबहान तआला जन्नत में खुद अपने हाथ से लोगों को शराब तहूर पिलाएगा, पाक शराब होगी, गंदी नहीं होगी, और साथ ही कहा जाएगा इन्ना हाज़ा कान लकुम जज़ाम, इन्हें कहा जाएगा ये तुम्हारा सिला है और मुबारक हो तुमको कि वकान सायुकुम मशकूरा, कि तुम्हारी कोशिशें कबूल हुई। हिसाब तुम्हारे आमाल की कोशिशों का बदला है, बस अल्लाह ने इसकी कदर कर ली। हमारी कोशिशों से क्या होगा। कल के प्रोग्राम पे किसी से मेरी बात हो रही थी तो एक बड़ी अच्छी बात अल्लाह ने दिल में डाली जो मैंने उनसे शेयर की। मैंने कहा कि लोग अमूमन पूछते हैं, एक फ्रेंड है, आप लोग भी घर जाते होंगे, पूछते होंगे कैसा रहा, क्या हुआ। ख़ास तौर पे अब चूँकि स्कूल का प्रोजेक्ट चल रहा है तो लोगों को पता है कि हम फंडिंग के लिए कर रहे हैं, तो कितने का बिका, जेवर क्या हुआ। तो मैंने कहा कि अमूमन तो नज़रों में आता है ना, जैसे आपको भी सुबह बताया कि इतना हुआ कल के प्रोग्राम से। मैं गुजर रही थी, गाड़ी में थी, मेरे सामने बिल्कुल पहाड़ और पूरा सब्जा था। तो मेरे दिल में आया कि अल्लाह सुबहाना ताला बज़ाहर हमें कुछ अमाउंट दिखाता ना कि आज के प्रोग्राम से तुमने ये ली, लेकिन असल जो मुझे बात समझ आती है कि अल्लाह हमारी उस कोशिश के बदले में हमें कहीं और से दे देते हैं। बात समझ रहे हैं? आपको कल के प्रोग्राम से हुआ 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4, 5, जितना भी हुआ, आप कहते हैं आज का प्रोग्राम कामयाब है क्योंकि इसमें 3 लाख करोड़ मिल गया हमें। बिल्फर्ज अगर ना मिलते, 30,000 भी ना आते, खर्चा भी ना पूरा होता, तो आप कहते फेल हो। अल्लाह की नज़रों में आपका 3 लाख पाना या 3,000 पाना एक बराबर है। अल्लाह ने पता क्या करना है, आप सबकी कल की कोशिशों के बदले में जो आपने की, कोशिश की, गलती की, अच्छा किया, ठीक, उसके बदले में आपको 3 मिलियन से भी ज़्यादा दे देना है, और वो कहीं से भी दे देना। काना सायुकुम मशकूरा, कोशिश, वल्लाह की कोशिश। अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे, आप कहते हैं हाँ अगर हम ये प्रोग्राम ना करते तो हम 3 लाख से महरूम होते, नहीं, 3 मिलियन से भी ज़्यादा से महरूम होते, क्योंकि अल्लाह आपकी कोशिशों की कदर करता है। वहाँ तक तिलावत सुन के फिर कुछ मुश्किल अल्फाज को देखेंगे। अल्फाज के अतबार से सूरत हर बड़ी मुश्किल है, लेकिन मानी और मफहूम के अतबार से बड़ी खूबसूरत सूरत है। किस तरीके से अल्लाह हमें ऐसे लगता है कि इस दुनिया में बिठा के जन्नत की सैरें करवाने लगते हैं, और ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक वो ज़िंदगी है जिसको एक इंसान देखना चाहता है।
إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا.
آیا تم نے خلاصے کے طور پر کر لی تھی آیت 23 تک؟ میں اس میں سے کچھ الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گی. کچھ مشکل لفظ دیکھیں گے ان آیات کے اندر جو ہمارے سامنے آئے. اگر ہم پیچھے سے ہی دیکھیں, اساویرہ کا لفظ اسور سے ہے, سیوار کی جمع ہے, سین وورا اس کا روٹ ہے. کنگن کو کہتے ہیں جو ہاتھوں میں پہنے جائے, پیچھے بھی بات گزری تھی لیکن یہاں دوبارہ کی. استبرک کا لفظ برقہ سے, اردو میں بولتے ہیں ایک چھوٹی سی چمک ہوتی ہے, ابرق بولتے ہیں اس کو, کپڑوں میں لگاتے ہیں. تو یہاں اصل میں استبرق کے اندر چمک کا معنی بھی آتا ہے. فضہ چاندی کو کہتے ہیں, فادوات دوات بکھری ہوئی چیز, چھوٹی چھوٹی پتریاں. تو چاندی بھی بیسیکلی بکھری ہوئی ایک چیز کی طرف سینس آتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے زیورات کے ساتھ دونوں کا تذکرہ کیا. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ کلچر تو ایسے ہیں کہ جہاں مرد کو کنگن پہنایا جانا یا اس کو یہ کہنا کہ اب چوڑیاں پہن لو, یہ تو اس کی مردانگی کے خلاف ہے. تو کیا جنت میں مرد زیور پہنیں گے؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں ابھرتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل جو فیشنز یا رواج ٹریڈیشن ہوتی ہے نا, یہ ہمارے ذہن کے مطابق ہوتی ہے. ہمارے کلچر جس کو پاکستانی انڈین کلچر کہتے ہیں, اس میں ہو سکتا ہے مرد کے زیور پہننے کو برا سمجھ لیں, اور حقیقت میں مرد کی مردانگی کے خلاف ہے, نازک مزاجی کی طرف اشارہ ہوتا ہے. لیکن پہلے دور میں بادشاہ کنگن پہنتے تھے. کیسرو کسرا کے خزانے جب مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے تو اس میں بڑے بڑے موٹے موٹے کنگن بھی ہوتے تھے. تو جنت میں جا کر وہاں یہ چیزیں اعزاز کے طور پہ ہوں گی. ہمیں نہیں پتہ وہ زیور کیسے ہیں, مردوں کے زیور فرق ہوں گے عورتوں سے, لیکن اس سے ذہن میں دنیا میں عورتوں کی نسبت لینا مردوں پہ نہ جائے, اور اس سے یہ بھی نسبت لے کے یہ نہ ہو کہ آج کے مرد دیکھیں کہ ہم بھی پھر یہ پہن لیتے ہیں. اور کیا, اب دیکھیں جتنی بھی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ادھر بیان کی ہیں, وہ تین طرح کے چشمے ہیں, وہ کپڑے ہیں, وہ سر سبز ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل نہیں ہیں. اصل جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. جب بندہ اللہ کی رضا کو پا لے گا اور یہ بات سن لے گا کہ انہا سلکم جزا ام وکان سایکم مشکورا, تو پھر اس کے بعد اس کو کنگن ملے, چوڑیاں ملیں, موتی ملیں, ستارے ملیں, اس کو سب قبول ہے. اصل چیز اللہ کی رضا ہے.